पे जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा वरना बाबर आजम आ देख ले भाई कोई माई
बाबर
इनोवेशन।
आजम आ जाएगा।
हाँ मशहूर में कहते हैं ना
हाँ जी
वरना गब्बर सिंह आ जाएगा।
हाँ हाँ जी, बाबर आजम आ जाएगा।
बाबर आजम आ
जाएगा। कितने आदमी थे
सरदार दो और तुम पांच फिर भी गोबर सिंह आजकल बड़ा याद आ रहा है।
हाँ जी हाँ जी
है ना जी
कितने आदमी थे।
सरदार दो गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए।
बाबर का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई
नहीं
दिए।
बाबर का नाम नहीं मिला।
नहीं उन्होंने पांच भेज दिए ना। बाबर तो दो ही भेजे थे।
हाँ हाँ
उन्होंने पांच भेज दिया था। ला यार न्यूजीलैंड तुम भी क्या आदमी हो।
हाँ इतना सिक्योरिटी का डर है तुम्हें।
हाँ इतना तुमने पांच भेजे हैं। हमने तो उसको सिर्फ दो ही भेजे।
निकाल लिया था काम।
अच्छी बात नहीं
बस मायूस भाई मैंने कहा ना मेरे और आपके दिन कम है।
अच्छे बच्चे
हमने बाहर बैठना है।
अच्छे अच्छे बच्चे ऐसी बात नहीं करते।
हाँ 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 मायूस भाई आप जो है ना मैं अच्छी भली खबरें करने आती हूँ आप इतना कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना आपके साथ मेरी भी मंजी बाहर लगी हो। नौकरी ऐसे काम।
मैं तो अपनी मंजी लगा के कहूंगा मंजी कहते बाबा
आशा भाजी बताएंगे दरख्त के नीचे। अच्छा जी अच्छा जनाब तो हम अपनी कड़ी शुरू करते हैं जी। कड़ी हमारी का पहला चैप्टर है eawaz.com। eawaz.com पे जाएं वहां पे हमारी पीआरईसी वेबसाइट पे लाइव रेडियो देखें और सुने यानी के और टीवी देखें और ब्रेकिंग न्यूज देखें फिर लोकल खबरें पढ़ें। बेशुमार खबरें हैं हमारी यहाँ पे लोकल वो देखें आप। उसके बाद फिर हेल्थ जो है उसके कुछ जो है नई नई रिसर्च आ रही है वो क्या कह रही है मेडिसिन में क्या हो रहा है लाइफस्टाइल कैसे होने चाहिए आपके एंटरटेनमेंट की क्या है चटपटी खबरें वो आप पढ़ सकते हैं। यूथ जोन में एज एंड वेन हमारे पास स्टोरीज आती हैं हम डालते हैं। फिर कनेडा में क्या हो रहा है स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है तो जनाब बड़ी स्टोरियां हैं हमारी वेबसाइट पे और राइट साइड पे आपको नजर आएगा हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स तो आप प्लीज उनको सपोर्ट करें। और जनाब कुछ स्पॉन्सर्स के हम आपको रोज पैगाम देते हैं तो पहला पैगाम आपको देना चाहते हैं हम आपको कुछ दिनों से बता रहे हैं ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है ब्रैम्पटन में स्टैक टाउन्स। इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 650,000 डिपॉजिट आपने देना है 20,000 ऑन साइनिंग। क्लोजिंग इसकी 2023 में है। असाइनमेंट क्लॉज अवेलेबल है लेवीज कैप्ड है तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीम हिना को फोन करें। इनका नंबर है 416-993-6600 टीम हिना 416-993-6600। इसके अलावा जो नया एक और प्रोजेक्ट आ रहा है बर्लिंगटन में ये है कॉन्डोज ब्यू सुले और इनकी प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं 450,000 से 450,000 से डॉलर से रुपीज ना समझ बैठना और डिपॉजिट है $5,000 ऑन साइनिंग। क्लोजिंग है 2024 में। असाइनमेंट क्लॉज अवेलेबल है लेवीज कैप्ड है तो इसके लिए एक दफा फिर आप टीम हिना को फोन करें ऑन 416-993-6600। एंड जनाब रिमिटली आप अपने प्यारों को किसी भी कोई भी ओकेजन है उनका बर्थडे है एनिवर्सरी है शादी है तो आप उनको अगर वतन से दूर भी हैं तो आप उनको पैसे दे के उनके साथ आप शामिल हो सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालें डाउनलोड करें रिमिटली की ऐप उसमें पैसे डालें और सेंड करें 15 मिनट्स में उनको पहुंचेंगे और आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। तो जनाब इसमें आपका कुछ इतना टाइम भी नहीं लगता कहीं भी जहां भी आप बैठे हैं आप वहां पे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से ये कर सकते हैं। दिस मैसेज इज स्पॉन्सर्ड बाय फ्रेंड्स एट रिमिटली।
और सब जब प्रोजेक्ट्स की बात हो रही तो एक प्रोजेक्ट मैं भी आपको बता दूं LJM हार्बर फ्रंट। सब ये समझ लीजिए कि यू डोंट हैव टू काउंट द डेज नाउ एवरीथिंग इज आरफा जी के पास और 4 साल में ये LJM हार्बर फ्रंट का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 टावर्स हैं यहाँ पर एक 20 स्टोरीज का एक 23 स्टोरीज का। लोकेशन 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 3 साइट पे आपको लेक नजर आएगी एक साइट पे आपको हाईवे विच इज QEW नजर आएगा। QEW के एकदम बराबर में साहब ये बन रहा है ये एंड वेरी क्लोज टू बीम्सवेल 4 मिनट की ड्राइव है यहाँ पर जो उसका जो गो स्टेशन है ओनली फॉर 4 मिनट्स अवे एंड जब अगर राइट बिसाइड QEW है तो इट मीन्स कि मिनट्स टू हाईवे QEW इफ यू वांट टू कम टू टोरंटो और इफ यू वांट टू गो टू नियाग्रा और सेंट कैथरीन्स और एवरीवेयर हाईवे आपको एकदम साइड पे मिलेगा, आपके बराबर मिलेगा। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप आरफा जी को कॉल कर लें, LJM हार्बर फ्रंट पे। दिस इज द प्रोजेक्ट दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इन टाउन। सो आपको भी अगर इसमें बुकिंग करवानी है तो आरफा जी से कॉन्टैक्ट कर लें, 6478968645, 5:45 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और अब ली चलेंगे अपनी पूरी की पूरी खबरों की जाने। बेन शाजिया मलिक जी, जी फरमाइए
जी। मलिक भाई, सबसे बड़ी तो आजकल जो खबर चल रही है वो तो वही है ना, COP26 जो कि यूएन की क्लाइमेट जो है समिट चल रहा है, तो उसके अंदर सारे आप लीडर्स देख रहे हैं आजकल वहां पे हैं, और जो है ये ग्लासगो में हो रहा है, स्कॉटलैंड का एक शहर है, तो वहां पे हमारे जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं तो उन्होंने जो है बाकी लीडर्स जो थे उनके साथ थे, ये वहां पे बाइडन साहब हैं, मर्कल साहिबा हैं और भी बहुत सारे 120 अदर नेशंस जो हैं उनके लीडर्स वहां पे आए हुए हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम अपना फर्दर तो एनहांस टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत एम्बिशियस टारगेट दे दिया था, एंड जुलाई के अंदर जो है ट्रूडो साहब ने कहा था कि हम 40-45% कम जो है एमिशंस जो है हमारी होंगी 2005 से कंपेयर टू, तो यानी कि 2013 में पहुंचते तो उन्होंने कहा था कि आपको पता ही है कि यहां पे ऑपोजिशन ने भी बड़ा शोर मचाया था, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही एम्बिशियस इनका प्लान है। बहरहाल इसी चीज को आज उन्होंने रिएट्रेट वहां पे किया है, और उन्होंने कहा जी कि हम ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस हैं उनको फर्दर हम कट जो है वो और अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि उसके साथ क्या है ना कि उसके साथ फिर आपको अपना हिस्सा जो है वो भी बढ़ाना पड़ता है, जो कि बहुत दफा कहा जाता है कि भाई ये जो कैनेडा है ये एक सर्टन परसेंटेज जो आपकी GDP की होती है वो आपको देनी होती है, जैसे कि आपको याद ही है कि जो ट्रंप साहब ने काफी उस पे शोर मचाया था। तो वो बहरहाल अभी जो है ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम अभी इतना ही रखेंगे और फर्दर जो है आगे नहीं जाएंगे। टोरंटो के अंदर एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ, एक लड़का है 23 ईयर्स का और वो अपनी गाड़ी में सो रहा था, तो जब पुलिस उसके पास, टोरंटो पुलिस के बंदे उसके पास पहुंचे तो उसको उठाया, तो वो पता चला कि जी उसको, जब उसका वो लिया टेस्ट वगैरह लिया तो पता चला जी इंटॉक्सिकेशन है उसको, और उसके अलावा जब उन्होंने सर्च की उसकी गाड़ी तो जनाब उसके पास से मिले ड्रग्स, 3.67 किलोग्राम्स ऑफ क्रैक कोकेन, 32.72 ग्राम्स ऑफ फेंटेनॉल, 11 विवेंस पिल्स, $8,000 इन कैश, और लोडेड 9mm की जो थी ग्लॉक मॉडल 17 पिस्टल थी, जिसके के अंदर 17 जो है वो 4 राउंड्स भी थे उसके अंदर। तो अब तो बड़ी उनको हैरत हुई कि भाई ये गाड़ी जो है साइड पे खड़ी हुई है, लेकिन शायद उसने नशा इतना किया हुआ था कि उसको होश ही नहीं रही, शायद वो भाग ही नहीं सका। तो लेकिन अब ये केसेस जो है ये डाले तो हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस जो है वो लगे नहीं है। बहरहाल ये टोरंटो पुलिस की जो है आज प्रेस रिलीज थी जिसमें कि उन्होंने बताया कि जी एक आदमी जो है
उसका नाम भी बता दीजिए, किश्नर रहने वाला है और उसका नाम है मुनीर सोले।
मुनीर सोले, हाँ जी हाँ जी,
मुनीर सोले साहब, सही तो नहीं किया आपने, मगर अब क्या कर सकते हैं,
अब क्या कर सकते हैं, यानी अगर आपने गलत काम करना था तो आपको सोना नहीं चाहिए था, गाड़ी लेके भाग जाना चाहिए था, व्हाट इज दिस, क्या किया आपने, तो खुद ही किया, आप बैल मुझे मार रहे हैं जी, ये काम किया उन्होंने। अच्छा जनाब, पॉइकडेल कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट हाई स्कूल के एक स्टाफ मेंबर हैं और उनको जो है अब छुट्टी पे भेजा गया, उसकी वजह क्या थी कि कल हैलोवीन थी, तो हैलोवीन पे उन्होंने अपना फेस जो है वो ब्लैक कर लिया। अब जब उन्होंने अपना फेस ब्लैक कर लिया तो वहां पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल थी जूली आर्डेल उसको शिकायत लगाई, ये क्वीन स्ट्रीट के पास है ये स्कूल, उनको ये शिकायत लगाई, तो उन्होंने कहा जी कि हम इस चीज को एंडोर्स नहीं करते हैं कि आप किसी के कल्चर को खराब करने की कोशिश करें, चाहे आपकी इंटेंशन थी कि ये नहीं थी, लेकिन ये लोगों का कल्चर जो है उसको ये करती है, ऑफेंड करती है और बड़ा ऑफेंसिव है ये, और ये आपने अगर नहीं भी चाहा था लेकिन लोग इसको देखेंगे एज अ रेसिस्ट एंड ڈی ہیومنائزڈ جو ہے وہ ایکٹ آپ کا دیکھیں گے یہ. تو یہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو اب یہ اب اس کے اوپر کیا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی وہ جو جیسے اسکوڈ گیمز تھی نا ماجد بھائی جو آئی تھی ابھی بڑی پاپولر جو ہو گئی ہیں, اسکوڈ گیمز کے اندر وہ جو انسٹرکشنز دے رہا ہے نا آدمی وہ اس نے بھی وہ پورا اس نے بلیک وہ پہنے ہوئے ہیں. تو اب کوئی اگر اسکوڈ گیمز کا ایسے ماسک پہن کے مطلب ہے یہ ہر روز تھوڑی کرتے ہیں لوگ, یہ تو اسی طرح کا کوئی ہیلووین آ گیا یا کچھ اس کے اوپر اب یہ اگر کر لیا ہے تو اب ہر کسی کو مطلب اس طرح نکالیں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ٹوڈو صاحب کے اوپر بھی کافی وہ کیا تھا, وہ بلیک وہ پرنس بنے ہوئے تھے, عرب پرنس بنے ہوئے تھے ہاں اسکول کے زمانے میں, اور ٹیچر تھے جس وقت تو وہ بلیک کی ہوئی تھی. تو اب اس پہ تو اب یہ تو اسپیشل اوکیزن ہے, اس میں تو لوگ ڈفرینٹ قسم کے وہ پہنتے ہیں کاسٹیومز وغیرہ, تو اس میں پتہ نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا اسکول میں اس کے اوپر جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اچھا جناب آج تو جو آسٹریلین ایئرپورٹس ہیں اس کے اوپر بہت ہی ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے کیونکہ آج منڈے کو انہوں نے اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کھول دیے ہیں. تو بہت عرصے سے جو لوگ جو ہے اپنے پیاروں سے نہیں مل سکتے تھے وہ آج وہاں پہ آئے, کوئی مائیں تھیں کوئی اور ریلیٹیوز تھے کوئی اور لوگ تھے وہاں پہ, تو بہت ہی ایموشنل سینز تھے. وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں اب ہم واپس آ سکتے ہیں اور ہم کو کوارنٹین نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے اندر آسٹریلین گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ جو وہ خاص کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی آسٹریلین سٹیزنز کے لیے ہے, ابھی تک ہم نے یہ پی آرز اور ان کی فیملیز کے لیے نہیں کھولا ہے. تو جو کوئی بھی آ رہے ہیں, تو آج وہاں پہ دو فلائٹس آئی ہیں, ایک تو سنگاپور ایئر لائن سے اور ایک لاس اینجلس سے کچھ ٹریولرز آئے ہیں. تو ان کو جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی بڑا گریٹ کیا ہے, آسٹریلین چاکلیٹس دی ہیں, اور وہاں پہ جو ریلیٹیوز بھی آئے ہوئے تھے اپنے پیاروں کو ملنے تو وہ بھی ملے ہیں. ورنہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پچھلے 18 منتھ سے جو تھا ٹریول کے اوپر کمپلیٹ بین تھا, تو یہ
آہستہ آہستہ پوری دنیا میں
کھل رہا ہے آہستہ آہستہ. ہاں جی ہاں جی. تو بڑا وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا ہے. میلبرن کے اندر تو انہوں نے وہ جو سنگاپور ایئر لائنز کا جو وہ آیا تھا جو جہاز آیا تھا اس کو پورے اوپر تو اس کے اوپر تو انہوں نے سپرے کیا اور بڑی خوشیاں وہاں پہ منائی گئی اور فلاورز دیے چاکلیٹس بانٹے, تو بڑے وہاں پہ خوش ہوئے ہیں لوگ. اچھا یہ جو عارفہ باجی نے جی ابھی آپ کو تھوڑی سی یہ خبر سنائی ہے کہ ایک آدمی بیٹ مین کے کپڑے میں پہن کے جوکر کے کاسٹیوم میں وہاں پہ جاپان کے اندر جو کہ وہ کر رہا تھا لوگوں کو اس نے جو سٹیب کیا ہے. اچھا اس کے اندر صرف میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہیلوئنگ سے ریلیٹڈ ہی تھا. ہیلوئنگ پہ تھا یہ یسٹرڈے اور یہ کل. تو پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ جیسے کیونکہ اس نے کیا کیا اس کے بعد اس نے آگ لگا دی وہاں پہ, تو آگ لگائی تو لوگ پہلے تو سمجھے کہ شاید ہیلوئنگ ایکٹ ہے کوئی, یہ کوئی ایکٹ ہے. اس نے وہ ایک تو کاسٹیوم بھی پہنا اور آگ بھی لگایا, لیکن جب اس نے سٹیبنگ شروع کی اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 17 لوگ انجر ہو گئے جس میں کہ ایک بہت ہی سیریس ہے اب, تو اس کے بعد ان کی جب اس کی جب چھری کے اوپر انہوں نے خون دیکھا تو وہ بہرحال اس کو وہ اتھارٹیز نے ادھر ہی پکڑ لیا, اس کو وہ اریسٹ ہو گیا ہے وہ لڑکا. اور ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ یہ جو ہے اس کا موٹیو کیا تھا. لیکن کل جو وہاں پہ سینز دیکھے گئے جاپان جیسی مہذب جگہ پہ کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ چیخے مار رہے تھے اور فائر فائٹرز اور ساری پولیس آئی ہوئی تھی اور بچیاں جو ہیں وہ کھڑکیوں میں سے چھلانگیں مار رہی تھی ٹرین اسٹیشن پہ, تو کافی وہاں پہ جو ہے ہنگامہ وغیرہ جو ہے وہ رہا اسکیپ کرنے کے لیے, لوگوں نے کھڑکیوں سے پھر چھلانگیں لگائیں. تو بس کافی وہاں پہ یعنی برا بری تھی وہ فوٹیج جو تھی دنیا کے لیے, وہ جاپان سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی بری فوٹیج تھی کیونکہ جاپان جو ہے بہت ہی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنا مہذب کنٹری سمجھا جاتا ہے. ہاں جی اگر آپ وہاں پہ جائیں بھی نا ماجد بھائی, تو اگر کسی کو آپ کی لینگویج نہیں بھی سمجھ آتی ہے نا, تو آپ اس کو اگر میپ دکھا رہے ہیں, اف یو آر اے ٹورسٹ فار ایگزامپل, ہیو یو بین ٹو جاپان, ہاں اگر آپ جائیں گے کوئی بھی اسٹرینجر ہے کسی کو آپ نے میپ دکھایا نا ایسے کر کے اوساکا میں آپ جیسے جائیں گے یا کہیں, تو آپ اس کو یہ دکھاتے ہیں یا ٹوکیو میں جاتے ہیں تو آپ اس کو
جگہ پوچھنے کے,
ہاں یہ جگہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جگہ کہاں ہے, پہلے تو وہ جھکے گا آپ کے آگے ایسے کر کے, پھر اس کے بعد بولے گا ایسے کر کے اشارہ کرے گا کیونکہ اس کو آتی نہیں ہوگی انگریزی, موسٹلی نہیں آتی ان کو, تو وہ آپ کو لے کے اس جگہ پہ چھوڑ کے پھر آپ کے آگے ایسے جھک کے تو پھر جائے گا کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جو تم مجھے ایسے یہ دکھا رہے تھے اس کے اوپر. تو بہت مہذب ہو گئے ہیں وہ, بہت مہذب ہو گئے ہیں. اور یہ ان کی جو تھی بڑی ہی یہ ایک انٹینشن تھی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, جب ان کو اتنا مارا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے بہت یعنی سیولائزڈ اس کی طرف جائیں گے. تو ایسے ہے. اچھا جی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں, اگین جس چیز کا ذکر عارفہ باجی نے کیا تھا, یہ سکس فار جسٹس نے کل ایک ریفرینڈم کرایا ہے خالستان کے اندر انگلینڈ کے اندر. تو ہم ایک آپ کو پہلے تو ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو اس خبر کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. تو عامر پلیز ذرا وہ ویڈیو لگائیں تھوڑی. Thank you. ये मजद भाई जो वीडियो आप देख रहे थे अभी, ये ऐसा हुआ है कि वहां पे कल ही 31 अक्टूबर को क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में ये इन लोगों ने जो तकरीबन थे कोई गुरुद्वारे थे बहुत सारे वहां पे 100 के करीब जो इंग्लैंड में गुरुद्वारे हैं, उन्होंने लोगों को बसें प्रोवाइड की और उनको कहा कि आप जाके इस रेफरेंडम के अंदर आप वोटिंग करें। तो वहां पे काफी बड़ी तादाद में आए हुए थे सिख और उन्होंने वोटिंग की है खालिस्तान के लिए। और ये आप मतलब ये जो डे था इसकी ये भी सिग्निफिकेंस है अक्टूबर 31 की, कि अक्टूबर 31 को जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका भी असैसिनेशन वहां पे हुआ था। तो ये जो है सिखों की बड़े अरसे से मांग थी कि उनका अपना एक अलहदा वो होना चाहिए, मुल्क होना चाहिए, और ये 2020 में एक्चुअली रेफरेंडम होने वाला था लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये काफी जो था वो जाहिर डेफर हो गया और अब वो कर रहे हैं 2021 में। तो इसमें जो है वो आपको पता ही है कि इन्होंने जो इंदिरा गांधी जी को भी मारा था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के रहते हुए मारा था। भाई आपने ये किताब पढ़ी है, ये जो है एक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़ें और मैं आप सारों को भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये पढ़ें। ये लिखी है इसने जीबीएस सिद्धू ने, और जीबीएस सिद्धू साहब जो थे वो रॉ के एजेंट थे और उनको वीजा काउंसलर सर्विसेज में यहां पे कनाडा में भेजा गया था और उनको कहा गया था कि आप असेस करें कि ये जो 1984 के बाद सिख जो हैं सारे इंडिया से निकल के हिंदुस्तान से आगे हैं यहां पे कनाडा में, यूएसए में, इंग्लैंड में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो गए हैं, तो आप जरा एक असेसमेंट करें जाके कि कनाडा के अंदर ये किस तरह का सेंटीमेंट है। एंड देन इवेंचुअली ही ऑल्सो ट्रेवल टू यूएस यही असेसमेंट्स करने के लिए। तो ये उनके एक्सपीरियंसिस के ऊपर किताब है और उन्होंने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया इस किताब को जब ये इन्होंने लिखी थी। तो पहले हिस्से में तो उन्होंने ये बताया कि व्हाट लेड टू दिस खालिस्तान मूवमेंट, कि भिंडरा वाले जो हैं उनको कैसे, जरनैल सिंह भिंडरा वाले को कैसे एक तो एलिवेट किया गया, एक आम से प्रीचर थे ये पंजाब के, और उनको कैसे एलिवेट किया गया टू द लेवल ऑफ अ लीडर और फिर ये कैसे चलाई गई और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी कि ये कैसे सारी चीज चली और इसमें क्या कॉन्स्पिरेसीज थी, कौन लोग इन्वॉल्व थे एंड ऑल दैट, बिकॉज ही वॉज द रॉ यू नो ऑफिशियल, तो उनको तो अंदर की सारी स्टोरीज पता थी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये जरूर पढ़े, अगर आप समझना चाहते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट कैसे शुरू हुई, क्या हुआ एंड व्हाई इट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी और ये सारा कुछ, तो फिर आपको जो है ये होगा। तो ये कल काफी वहां पे हंगामा रहा, यहां पे वहां पे जो बड़े बड़े जितने भी चैनल्स थे इंग्लैंड के वो सारे इसको कवर कर रहे थे क्योंकि हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे वहां पे जिन्होंने जाके वोटिंग की। अच्छा जनाब, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ठंडी ही चली जा रही है, हमने ये वीकेंड पे खबर दी थी ना
कल, कल तो बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से हाथ वाथ मिला के
लेकिन जो है प्यार मोहब्बत से वो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। वो जो हमने फ्राइडे को बताया था कि वही फिशिंग के जो राइट्स हैं पोस्ट ब्रेक्सिट, वो जो है वो कहते हैं, इंग्लैंड कहता है ये हमारा एरिया है, अकॉर्डिंग टू डील जो है अब आपको न्यू लाइसेंसेज हमसे लेने पड़ेंगे। फ्रांस कहता है कि जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंसेज हैं वो फिर से तुमसे लाइसेंसेज क्यों ले, वो कहता है देन वी वर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब हम ब्रेक्सिट के अंदर हैं, हम अब यूरोप, तो अब आपको जो जो आदमी फिशिंग करना चाहता है इन वाटर्स में, फ्रांस कहता है कि ये तो अब इंटरनेशनल वाटर्स है, अब तो ये तुम्हारे वाटर्स नहीं है, राइट। तो इस तरह की ये लड़ाई चल रही है। तो आज क्या हुआ है कि आज यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी है लिज ट्रुस, उन्होंने आज कहा है, क्योंकि फ्रांस ने अपेरेंटली जो है वो थ्रेटन किया है इंग्लैंड को कि बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप पीछे हटे ना अपनी इस डिमांड से, तो आज जो यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज ट्रुस, उन्होंने भी कहा है कि पेरिस जो है बहुत ही बैड तरीके से बिहेव कर रहा है, ये ठीक तरीका नहीं है और हमारा पूरा एक ट्रीटी हुआ था जब हम यूरोपियन यूनियन से निकले थे और ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी हम कर रहे हैं, और फ्रांस को इस बात का पता है कि ये ब्रेक्सिट में जब यूके गया है तो ट्रीटी के क्या क्लॉजेस थे, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी जो है ये अब इधर नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने हर किसी को रोका नहीं है, हमने कहा है कि अभी भी जिनके पास पुराने लाइसेंसेस हैं आप फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग अब आ रहे हैं उनको अब हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये अब लड़ाई जो है काफी गंभीर होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है और काफी ये चलती जा रही है, क्योंकि जो है इसने फ्रांस ने जो है इनको काफी वो किया है, थ्रेटन किया है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो यूके ने कहा कि फिर हम भी लेंगे लीगल एक्शन, राइट। तो ये इस तरह की अभी जो है इनके बीच में बातचीत चल रही है। अच्छा जी, आज आपको हमने अभी बताया जैसे कि जस्टिन ट्रूडो साहब COP26 पे थे, वही जो ग्लासगो के अंदर हो रही है क्लाइमेट जो समिट हो रही है उसके ऊपर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई ये बड़ी अर्जेंट वो है और हमको इसके ऊपर देखने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे असल में वो तो थे जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस इंटरेस्ट उनके उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग वो थे, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है कि वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे हमें कि भाई ये बड़ा ही, वो कह रहे हैं कि हमने बायोडायवर्सिटी को काफी ब्रूटलाइज किया है, हमने जो है ये काफी ये कार्बन जो है वो हमने पैदा कर दी है ये बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, जो कि किल कर रही है हम सारों को, हमने नेचर को जो है वी हैव ट्रीटेड नेचर लाइक टॉयलेट, उनके ये कमेंट्स थे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने बर्निंग की, ड्रिलिंग की, माइनिंग की, डिगिंग की, लेकिन अब नतीजा ये हो गया कि हमने एक्चुअली इन सब एक्शंस में अपनी ग्रेव्स डिग कर ली हैं, तो इसलिए जो है क्लाइमेट के ऊपर फौरन काम करने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा वहां पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन साहब, उन्होंने भी वहां पे स्पीच की और उन्होंने कहा कि भाई इनफ इज इनफ, जो हमने बहुत ज्यादा दुनिया को जो है खराब कर दिया है और ये क्राइसिस जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, हम क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हम तो कोई लेगेसी छोड़ के ही नहीं जा रहे, हम तो बहुत ही खराब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा सफर करेंगी। तो अब This is the decade to answer the questions के जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो कहते हैं जी ये डेकेड अब बढ़ गया, आगे चला गया, तो फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, हमको एक ऐसा जो है एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो नीट क्लीन हो और आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होए। और वो कहते हैं कि ये खाली हमारी इकोनॉमिक इंपेरेटिव नहीं है बल्कि हमारे ऊपर ये दिस इज अ मॉरल इंपेरेटिव टू डू समथिंग फॉर कमिंग जनरेशन। तो बड़ी उनकी जो है वो फोर्सफुल स्पीच थी इसके ऊपर। ये इससे पहले जनाब रोम के अंदर जो G20 की मीटिंग चल रही थी, जो कि हमने आपको बताया था फ्राइडे को, हो सकता है अर्दोगान साहब की मीटिंग हो बाइडन साहब से, तो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ जस्ट बिफोर दिस COP26 रोम के अंदर एक G20 की जो मीटिंग चल रही थी उसमें जो है अमेरिकन डेलीगेशन जो है उसकी मुलाकात जो है अर्दोगान साहब के साथ हुई है। और एक दफा फिर से अर्दोगान साहब ने इनको कहा है F-16 के लिए, उन्होंने कहा जी कि हमने आपसे वो आपसे तैयारे मांगे थे और वो हमको नहीं दिए गए थे। बहरहाल वो दोनों जो हैं लीडर्स उनके बीच में बातचीत तो ही, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि F-16 के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की गई है क्योंकि हमने इनको कहा था कि वो जो आपने जो जेल किया हुआ है फिलेंथ्रोपिस्ट उस्मान कवाला, उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे बात नहीं चलाएंगे। और ये पिछले दिनों में उनके ऊपर जो आवाज उठाई थी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने इंक्लूडिंग कैनेडा, तो टर्की ने कहा था कि हम इन सबको एक्सपेल कर देंगे अपने मुल्क से। तो अब ये ऑफिशियल्स का कहना है कि अर्दोगान साहब की जो बातचीत हुई है बाइडन साहब के साथ, तो उसमें इन सारे मसलों के ऊपर बातचीत हुई है और दोनों ने एग्री किया है कि हम इस पे, तो बाइडन साहब ने कहा है कि मैं देखूंगा इन सारी बातों को, मैं देखूंगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत अगेंस्ट है, वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा टर्की जो है गलत तरफ जा रहा है तो इसको ये F-16 वगैरह न दिए जाए। बहरहाल जो अब इन दोनों की बात हुई है, इसके आने वाले दिनों में क्या वो निकलेंगे रिजल्ट्स वो फिर हम करेंगे यहां पे, लेकिन अभी तो वो जो उन्होंने अपनी ट्वीट की थी अर्दोगान साहब ने, उन्होंने यही कहा था कि ये काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हमारी बातचीत जो है वो चली है आगे। अच्छा जी, रोना जो है गैस का ही पड़ गया है अब सारी दुनिया में, पेट्रोल का रोना पड़ गया है, हर कोई रो रहा है हाय रे हाय पेट्रोल कितना एक्सपेंसिव हो गया, कितना एक्सपेंसिव हो गया। तो अब जो बाइडन साहब हैं उन्होंने बड़ा जोर दिया है ओपेक प्लस को, हाँ हाँ तड़ी दी उसने ओपेक प्लस को, उसने कहा है कि तुमको हर हाल में प्राइसेस जो हैं वो नीचे लानी पड़ेंगी, और वो कैसे नीचे आएंगी कि तुम ऑयल ज्यादा पंप करोगे। अच्छा, अब ये ओपेक प्लस जो है उसमें वैसे तो वो अरब कंट्रीज थे सारे, लेकिन ओपेक प्लस जो होता है वो सिर्फ ओपेक होता है, ओपेक प्लस जो है उसमें नाइजीरिया भी है, रशिया भी है, ये सारे भी है,
वेंजुएला भी है,
हाँ वेंजुएला भी है। अच्छा, ये अब कहते हैं जी कि हमको प्राइसेस जो ज्यादा पंप नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऑयल पंप करेंगे तो $85 पर बैरल जो कीमत अब इसकी चल रही है उससे फिर से नीचे आ जाएगी। हमने ऑलरेडी जब ऑयल की प्राइस नीचे थी तो हमने सफर किया था, अब हम सफर करने को तैयार नहीं हैं, एज अ रिजल्ट हम जो है बिल्कुल ज्यादा पंप नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले आवाज जो है कुवैत ने उठाई है, उसने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं ये, क्योंकि रशिया और सॉरी KSA जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो अब USA के बड़ा करीब है, तो कुवैत ने कहा है कि अगर रशिया और सऊदी अरेबिया इस तरह का कोई स्टेप लेंगे तो हम जो है हम उनका साथ नहीं देंगे भाई, क्योंकि हम नहीं चाहते ज्यादा पेट्रोल जो है पंप किया जाए। और इसके अंदर उनको एंडोर्स किया है इराक, अल्जीरिया, एंगोला और नाइजीरिया ने भी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है हम चाहते हैं ऑयल की प्राइसेस हाई रहे, हमको ज्यादा पैसा।
और बाइडन साहब ने भी दो कंट्रीज का स्पेशल नाम लिया है और उसमें सऊदी अरब एंड रशिया है।
جی جی سعودی عربیہ اور رشیا تو دونوں نے ہی کہا ہے کہ بھئی ہم ابھی اس پہ بات پہ نہیں راضی ہیں زیادہ, لیکن کویت نے کہا ہے کہ اگر یہ راضی ہوئے تو پھر ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے. اچھا اب جو ایکسپرٹس وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپیک پلس نہیں مانے گا تو پھر دنیا میں آئل کی پرائسز نیچے لانے کو کیا ہے, کیونکہ بڑی انہوں نے پیشنیٹ اسپیچ کی ہے بائیڈن صاحب نے, انہوں نے کہا لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں, اپنے کاموں پہ جانا چاہتے ہیں, تو اٹس ناٹ فیئر کہ پرائز جو ہے پیٹرول کی اتنی زیادہ ہوئے. تو اوپیک پلس جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ پمپ کیا اور پرائسز نیچے لائیں تو ہم کو نقصان ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے. ایکسپرٹس جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر جو امریکہ کے پاس اسٹریٹجک ناٹ دا ہول ریزرو بٹ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو جو ہے, یعنی جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں کرائسز آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ یو ایس اے خود اس کو کھول دے, یو ایس اے کھول دے اپنا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو جو ہے وہ دنیا میں کھول دے, تو اس سے شاید آئل کی پرائسز نیچے آئیں گی. تو اب یہ کب آئیں گی اور یہ کب کریں گے یہ اس سے جی پتا چلے گا آنے والے دنوں میں. اچھا جناب, جو این سی پی کے لیڈر ہیں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور مہاراشٹرا کے منسٹر نواب ملک صاحب, وہ اپنے مورچے پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی. وہ کہتے ہیں میں ان سب کو ننگا کروں گا, یہ جو مہاراشٹرا کے اندر یہ جو انہوں نے فیک یہ جو چلائے ہوئے ہیں اس کے جو قصے کہانیاں یہ ڈرگز کے, ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور ہر کسی کو اندر کر دیتے ہیں, اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی. آج انہوں نے جو مہاراشٹرا کے ایکس چیف منسٹر ہیں فارمر چیف منسٹر دیویندرا فڈنویس, ان کو کہا ہے کہ ہی ایکچولی از دا ماسٹر مائنڈ آف ڈرگ کارٹل ان مہاراشٹرا.
نام لے کے انہوں نے
کہا ہے. اچھا اب یہ بات ظاہر ہے فڈنویس صاحب کو بڑی بری لگی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بالکل نواب ملک, اور میں تھوڑے دنوں میں میں ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ نواب ملک کا جو ہے ممبئی انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ ان کی بولی بول رہا ہے, تو میں یہ سارے ثبوت لاؤں گا. اب لوگ وہاں پہ بڑے ایکسائٹیڈ انڈیا میں ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر لاؤ سامنے انڈر ورلڈ کے کس کس بندے کے ساتھ جو ہیں وہ چھوٹا شکیل وغیرہ میں سے کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جی. تو لوگ اب وہاں پہ جو ہے بولنا شروع ہو گئے. اچھا اس نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ جو این سی پی کے چیف ہیں شرد پوار, ان کے ساتھ بھی میں شکایت کروں گا کہ یہ تمہارا جو بندہ ہے نواب ملک یہ بڑی غلط ایلیگیشن لگا رہا ہے. اس بیچ میں نواب ملک صاحب نے کیا کیا ہے کہ فڈنویس صاحب کی جو بیگم ہے امروتا, اس کی ایک تصویر چھاپ دی ہے ایک آدمی کے ساتھ جو انہوں نے پریس میں دی ہے اور پریس نے چھاپی ہے. وہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں, اس کا نام ہے جدیب رانا, اور کہتے ہیں کہ یہ ہے بیسیکلی کی ڈرگ پیڈلر مہاراشٹرا کے اندر, انفیکٹ انڈیا میں. تو اب ان کی بیگم کی تصویر کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ, یہ تو بڑا کوشچن ہے میڈیا نے پوچھا ہے, تو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ نیکسس کس کس کے بیچ میں ہے اور یہ کیا چل رہا ہے. واٹ از دس ماجد بھائی, بیگم صاحبہ کیا کر رہے ہو آپ, کیوں اپنے میاں صاحب کو آپ کر رہے ہو بدنام ہے. اچھا جی یہ اب پتا چلے گا. اچھا جی یہ دی وائر کی آج ایک سٹوری ہے, دس از ریٹن بائی بدری رائنا, اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے یہ ہے ہیٹ میں ون سم الیکشنز بٹ اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ کانسٹیٹیوشنل ٹیسٹ اور سالو پرابلمز ان انڈیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں ہوا کیا ہے, اس میں رونا وہی ہے جو انڈیا ہار گیا ہے پاکستان سے 10 وکٹوں کا. اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر یہ سارا کچھ 90 یہ جو ساری مسلم ہیٹ اور یہ جو پکڑ پکڑ کے انڈر یو اے پی اے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے, اگر یہی ہندوتوا کا سسٹم 1999 میں ہوتا تو تقریباً 50,000 انڈین جیلوں میں جاتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جس وقت یہ جیتے تھے پاکستانی تو سارا سٹیڈیم جو وہاں پہ انڈیا کے تھے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کو چیئر کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. اچھا وہ دوسرا وہ کہتے ہیں جی یہ جو اسٹوڈنٹس کو راجستھان میں اور شری نگر میں اور آگرہ میں پاکستان کی وکٹری منانے پہ ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا گیا ہے انڈر ان لافل ایکٹیویٹیز پروینشن ایکٹ, وہ یو اے پی اے جو ہے انڈر دیٹ ان کو ٹرائی کیا جائے گا بیچاروں کو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے.
صحیح.
اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کو آواز دی, انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کو جو ہے اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل دیا, انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے ایک کیرلا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے جو ہے कर दिया था इसको, क्या नाम है, पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा दिया गया था। तो उसको जिस वक्त पकड़ के तो ऐसे अंदर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, और ये एग्जैक्टली मैं पढ़ती हूं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इंडिया के अंदर उस वक्त, एंड दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्ट, दिस इज सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं जी मेयर एसोसिएशन विथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट सफिशियंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 38, सपोर्ट गिवन टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट सफिशियंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 39, एसोसिएशन सपोर्ट हैव टू बी विद इंटेंशन ऑफ फर्दरिंग एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके लिए वो कहते हैं जी कि आपको सजा मिल सकती है, बट जस्ट टू शो सपोर्ट फॉर अ राइवल टीम इन क्रिकेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी ट्राइड अंडर UAPA। अच्छा, अब ये कहते हैं जी कि ना सिर्फ हम बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून वालों ने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भई आप अंधे बन के मत बैठे रहो, आप ये जो बच्चे जो हैं जिनको के कॉलेजों से निकाल दिया गया है और उनको कहा है कि अब आप पढ़ाई नहीं आगे कर सकते हैं और आपको टेररिज्म के अंडर आपको चार्जेस चलाए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही मेहरबानी होगी कि वो अब हमको इंडिया में बता दे कि हमने किसको चीयर करना है और किसको चीयर नहीं करना है। लेट इट बी इंडिया, पाकिस्तान या कि कोई भी और। क्या हम, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो हम क्या ऑस्ट्रेलिया को चीयर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्या हमारे ऊपर टेररिस्ट चार्ज लाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा है। और वो कह रहे हैं जी कि ये भी हमें सुप्रीम कोर्ट जो है बता दे कि हमने अपनी लॉयल्टी शो करने का हमारे क्या तरीका है। अगर किसी इंटरनेशनल आइकॉन को हम पसंद कर रहे हैं तो वो मुल्क के खिलाफ डिसलॉयल्टी है, तो जरा ये भी सुप्रीम कोर्ट हमको बता दे। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे ही वो मैच खत्म हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया का तो कैप्टन जाके एक एक पाकिस्तानी प्लेयर से मिला था, उसने हैंडशेक किया, उसने उनको गले से लगाया, तो फिर ये इन स्टूडेंट्स ने जब वैसे ही चीयर किया तो उनके ऊपर UAPA चल रहा है, तो फिर कोहली जी के ऊपर भी UAPA के अंडर उसको भी करो, उसको क्यों आपने छोड़ा हुआ है, तो कोहली जी के ऊपर भी चलाओ फिर ये टेररिज्म के चार्जेस, क्योंकि वो तो सारों को गले लगा रहा था। तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट जी आप हमको बताओ कि अब हमको इस मुल्क में कैसे चलना है। लेकिन उन्होंने कहा है इसके अंदर, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही बैड इमेज पाकिस्तान का, इंडिया का दुनिया में भेज रहा है, बहुत ही बैड इमेज भेज रहा है कि हम अब दुनिया को पता चल गया कि वाकई ये हिंदुत्व पॉलिसी से ही ये मुल्क चल रहा है। तो ये इसको जो है सुप्रीम कोर्ट है जो आंखें खोले और इनको बताए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज ही एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनकी मुलाकातें जो हैं वो G20 समिट यानी कि ये ग्लासगो से पहले रोम के अंदर जो चल रही थी उसके अंदर उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथनी ब्लिंकन है US के, उनसे मुलाकातें हुई थी। और वहां पे अकॉर्डिंग टू डिटेल्स ये इनके साथ जो था ये मोदी जी के डेलीगेशन में थे और इनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन शिंगले और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल और बाकी लोग भी थे। और ब्लिंकन साहब के साथ जो इनकी जो मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर उन्होंने रीजन की सिचुएशन और अफगानिस्तान और बस वही सेम थिंग्स, टेररिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, सेम यू नो थिंग्स अगेन एंड अगेन, वो फिर उन्होंने जी सारी डिस्कस की हैं। तो इस सारी की डिटेल्स जो थी वो इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके ऊपर जो है वो डिटेल्स हैं। और उन्होंने जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने एक तस्वीर भी जो है अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब के साथ जो है वो डाली है। पाकिस्तान के अंदर जी जो एनर्जी का क्राइसिस डीप होता जा रहा है उसके लिए जो हमाद अजहर साहब हैं उन्होंने कहा है जी कि हम इस मसले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद के अंदर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है जी कि इसके लिए हमने 11 जो LNG कंपनीज हैं उनके साथ हमने किया है नवंबर के महीने में कि वो कार्गोज जो हैं वो हम हमारे साथ अरेंज करेंगे, और इन 11 में से अगर 9 भी हमारे साथ आगे चलेंगी और 2 ड्रॉप भी कर जाएंगी तो भी एनर्जी का क्राइसिस जो है वो खत्म किया जा सकता है। वो कहते हैं वैसे तो पाकिस्तान में लोगों को समझने की जरूरत है कि एनर्जी का क्राइसिस सारी दुनिया में ही चल रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी अरफाफा जी बात कर रहे थे जनरल साहब के साथ TLP के बारे में, तो TLP के साथ जी मुज़ाकरात हो गए थे वीकेंड के ऊपर और उसके बाद जो है वो मेन सड़कों से हट गए हैं क्योंकि उनको कहा गया है जी कि आप सड़कों से हट जाएं क्योंकि आम आदमी को बहुत तकलीफ है। और जाहिर है कि ये अगर आप रसूल को इतना मानते हैं और उनके असूलों पर चलना चाहते हैं तो उन्होंने तो कभी किसी मक्खी को भी तंग नहीं किया, तो आप लोगों को तंग कर रहे हैं तो आप जरा इससे हट जाएं। तो वो हट के अब एक ग्राउंड के अंदर बैठ गए हैं, लेकिन उनका मुतालबा अभी बहुत सारी चीजों पे तो उनकी बातें मान ली गई हैं, लेकिन एक अभी उनका है कि वो जो हैं इनके खादिम हुसैन साहब के बेटे जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, और उसके ऊपर भी बात चल रही है। और ये सारी जो चीज थी, ये बातचीत इनके साथ चला रहे थे मुफ्ती मुनीब साहब, और मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा है कि ये इसमें किसी की हार जीत नहीं है, ये इसमें पाकिस्तान और इस्लाम और ह्यूमन लाइव्स जो हैं उनकी जीत है। और साद रिजवी के बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है इन्होंने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ देखा जा सकता है कि क्या होगा। ये बड़ी लंबी मुफ्ती मुनीब साहब की और गवर्नमेंट की इनके साथ 12 घंटे तक ये जो है चलती रही, तो उसके बाद जो है ये सेटलमेंट हुआ है। तो जो है कुछ बातें मान ली हैं गवर्नमेंट ने, अब आगे देखेंगे क्या होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है FM पोर्टल। उस पोर्टल को इन्होंने किया है ओपन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और इसके अंदर अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी, कोई भी अगर आपके मुश्किलात हैं, तो उसको आप उसके ऊपर बता सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो 187 कंट्रीज में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिशंस हैं उनको कहा है कि इमीडिएटली जो भी कोई जनता के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको आपने करना है। और ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था अंडर डिजिटल डिप्लोमेसी एजेंडा, उसके अंडर जो है ये पोर्टल खोला गया है, और इसमें तमाम एम्बेसडर्स, तमाम काउंसिल जनरल्स को उनको कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए आसानी पैदा करें, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए QR कोड्स, डिजिटल सिस्टम टू रिड्यूस चांसेस ऑफ काउंटरफीटिंग, ये सब चीजें जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। इसके अलावा जी शाह महमूद कुरैशी साहब की फोन पे बात हुई थी ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिनका के नाम है मरीस पेन, और मरीस पेन को उन्होंने कहा कि जी हम जो है आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ और आगे ट्रेड और बायोलेट्रल रिलेशंस और टाइज और ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट जो है आप लोगों को अफगानिस्तान के मसले पे देखने की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए और इकोनॉमिक असिस्टेंस की जरूरत है, तो आप जो है फॉरन इस तरफ जो है वो ध्यान दें। और जनाब ये जो सलमान खान की फिल्म है अंतिम द फाइनल ट्रूथ, ये जो है इसका एक गाना सामने आया है जिसके के अंदर इनके जो हैं ब्रदर इन लॉ भी नजर आ रहे हैं आयुष शर्मा, और इसका जो टाइटल ट्रैक है वो है, यानी टाइटल ट्रैक नहीं है, एक गाना जो रिलीज हुआ है नया वो है भाई का बर्थडे। तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये इसमें बर्थडे बैश है, भाई वैसे तो सल्लू भाई को कहते हैं, लेकिन ये सल्लू भाई की बर्थडे इस फिल्म में नहीं मनाई जा रही, ये एक मिनिस्टर की जो है बर्थडे मनाई जा रही है, और उसमें जो है ये आयुष जो है शर्मा जो कि उसमें गैंगस्टर बना हुआ है वो उस मिनिस्टर का हाथ पकड़ के लाता है और उसको तलवार देता है कि भाई अपना केक काटो, तो वो काट रहे हैं तो साथ साथ गाने गा रहे हैं भाई का बर्थडे। तो जो फैंस हैं उन्होंने कहा है कि ये भाई का बर्थडे जो है गाना, दिस शुड बी डेडिकेटेड टू शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान की बर्थडे जो है वो November 2 को है, कल है यानी कल है, तो ये इनफैक्ट उसको डेडिकेट होना चाहिए। इसके अलावा द सेम फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को जो है आपको पता ही है कि डायरेक्ट कर रहे हैं महेश मंजरेकर साहब, और महेश मंजरेकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सलमान खान जो है वो बड़ा अकेला है, और वो कहता है वो बहुत सारी बातें जो और कोई सल्लू भाई से बात नहीं कर सकते हैं मैं कर सकता हूं उसके साथ, तो मैं उसको अक्सर कहता हूं कि भाई भाई तू शादी नहीं करता, उसका इशू है मेरे को, कहते हैं ये उसका इशू है मेरे को, वो कहे उन्होंने पूछा जी क्या इशू है आपको, क्या इशू है अगर वो शादी नहीं कर रहा, वो कहता है इसलिए कि देखो ना सारी दुनिया के हम बच्चे देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो सल्लू भाई जैसे आदमी का भी बच्चा जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं शादी कर रहा, ये क्यों नहीं बच्चा बना रहा, ये क्यों नहीं इधर फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आ रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इसका बच्चा हम देखें कि वो कैसा है, सल्लू भाई तो ऐसे हैं इसका बच्चा कैसा होएगा, तो दैट्स वाई। और जनाब सोनाक्षी सिन्हा साहब ने हुमा कुरैशी की जो है टांग खींची है, हुआ ये है कि हेलोवीन के ऊपर उसने एक तस्वीर अपनी जो है वो मास्क के साथ ऐसे लगाई है, और उसमें जो है वो उसमें ये भी देखी जा रही है, तो वो कह रही है सोनाक्षी कह रही है कि तुम पॉपुलर होने के लिए, ऐसी इसको मतलब टीज कर रही थी कि तुम दुनिया को बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम बड़ी हसीन हो, लेकिन असल में तुम मेरी तस्वीर के साथ अपने आप को प्रमोट कर रही हो। तो फिर उसके भाई को भी इसने कहा, साकिब को, कहती है भाई तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये दुनिया को बता रही है मैं बड़ी प्रिटी हूं, उसको प्लीज समझाओ। तो वैसे शुरू में लोगों को लगा कि जैसे इनके बीच में लड़ाई हो गई है, वो लड़ाई नहीं थी, शी वॉज जस्ट पुलिंग हर लेग कि तुम अपने जो है वो मेरी तस्वीरें यूज कर रही हो, हालांकि वो तो हर किसी की तस्वीर करती है, जैसे अभी लंदन गई थी हुमा कुरैशी तो सादिक खान के साथ इसकी मुलाकात हुई थी, और वो गुरिंदर चड्डा के साथ हुई थी, तो शी शेयर्स एवरीबॉडीज पिक्चर्स, तो इस तरह से, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये आज था, तो लोग फिर हंसना शुरू हो गए जाहिर है जब उसने सोनाक्षी ने एक्सप्लेन किया। और जनाब पाकिस्तान के जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नेम्स हैं वो देखे गए IPPA यानी कि इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड्स जो कि इस्तंबुल में हुआ है उसके अंदर, और बड़ा ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग वो शो रहा और वहां पे बड़े बड़े ये सितारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और जैसे कि अदनान सिद्दीकी, इकरा अजीज, मीरा, हानिया आमिर, सोनिया हुसैन एंड मेनी अदर्स वो वहां पे थे। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल जो थे वहां पे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा प्यार करते हैं टर्की से और अब हम फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है ये गैप को कम कर रहे हैं, हमारा टर्की के साथ प्यार खिलाफत मूवमेंट के जमाने से है और हम जो हैं हमारा दिल बड़ा पास है टर्की के, और टर्की का जो अब प्यार है हमारे घरों में है, हमें इंस्पायर करता है और अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं लेके ताकि हम फिल्म इंडस्ट्री में भी ये प्रोजेक्ट्स जो हैं जॉइंटली कर सकें। और इस मौके पे दोनों मुल्कों के जो हैं वो नेशनल एंथम्स भी प्ले किए गए थे। एंड जनाब वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज फ्यूज, कुछ लोग फ्यूज हो जाते हैं हमारी न्यूज सुन के, कुछ कुछ हो जाते हैं तो ये भी आज फ्यूजिंग न्यूज है क्योंकि आज इंग्लैंड में
या डिफ्यूजिंग,
हाँ डिफ्यूजिंग भी है ये, फ्यूजिंग और डिफ्यूजिंग दोनों है। इंग्लैंड अचानक हारते हारते एकदम से जीत गया, श्रीलंका को 26 रन से जो है इन्होंने हरा दिया और सेमीज की तरफ अब ये चल रहे हैं। और जनाब क्या बात है जॉस बटलर की जिसने अनबीटन 167 बॉल्स पे बनाए जी, वरना इनके 47.3 आउट थे इंग्लैंड के और 10 ओवर्स में, लेकिन फिर जी ये लेकर गए 163 तक और बड़ी जबरदस्त इनके बीच में जो पार्टनरशिप थी इन मॉर्गन और बटलर के बीच में, तो क्योंकि मलान और बेयरस्टॉ जो हैं वो तो जल्दी आउट हो गए थे तो फिर इन्होंने जी इंग्लैंड को बचा लिया। और जनाब शोएब मलिक साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो कल अब मैच है पाकिस्तान का नामीबिया के साथ उसमें जनाब अली हमारा मोरल बड़ा हाई है क्योंकि जब आप जो शुरू करते हैं अपना एक बड़े कंट्री के अगेंस्ट खेलते हुए मैच और उसमें आपको जब जीत होती है तो आपका मोरल जो है वो हाई हो जाता है, तो हमने पहला मैच इंडिया से जीता, फिर न्यूजीलैंड से जीता, फिर अफगानिस्तान से जीता, तो अब लड़के जो हैं दे आर ऑन अ हाई, यानी कि कोकेन पे हाई नहीं है वैसे मुराल में हाई हैं,
स्पिरिट में,
हाँ मुराल में और स्पिरिट्स में जो हैं वो हाई हैं, तो हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो ये हमें बता रहा है। एंड जनाब बहुत ही अफसोस की आखिरी खबर है, अगेन ये वही है ना, कोई डिफ्यूजिंग न्यूजें हैं, कुछ फ्यूजिंग न्यूजें हैं। अब ये जो मोहम्मद शामी थे ओनली मुस्लिम प्लेयर नाउ अडेज इन इंडियन जो है मिलिट्री आपके लिए क्रिकेट टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर, तो वो जो उसके अंदर जिस वक्त पाकिस्तान से हारे तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया उसको जो है मोहम्मद शमी को। अच्छा बड़े दिनों से जो है कोहली बड़ा खामोश बैठा हुआ था, फिर अब वो बोल पड़ा, वो कैप्टन है, उसने कहा भाई ये क्या नॉनसेंस चल रही है, तुम लोग क्यों इसको इतना ब्रूटली जो है असॉल्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, 11 प्लेयर्स थे ना, हर किसी की जिम्मेदारी थी, तो ये तुम खाली इसको ना करें। अच्छा जी अब जब कोहली बेचारे ने ये कहा तो हाँ फिर सारे शर्मान ही गए, बड़े वो हो गए होशियार हो गए, उन्होंने कहा ये जो तेरी 10 महीने की बेटी है ना इसको आके हम रेप कर लेंगे, तू बड़ा मुसलमानों का साथ दे रहा है। तो वो कह रहे हैं जी कि ये दिस इज वेरी बैड और ये हमेशा से इस तरह से बहुत सारे और भी प्लेयर्स को ये देखना पड़ता है क्योंकि आपको पता ही है कि इससे पहले भी अक्टूबर में लास्ट ईयर जब MS धोनी जो थे वो उनकी जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो हार गई थी KKR के अगेंस्ट, तो MS धोनी को भी इस तरह के आए थे और उसकी बच्ची तो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, तो इसको MS धोनी को कहा था कि तेरी बेटी को आके रेप कर लेंगे हम। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह से नेशनल हीरोज के बच्चों तक बात ले जानी और ऐसे करना इट इज वेरी वेरी बैड। तो ये अगर आप इस तरह के कमेंट्स देते हैं सारी क्रिकेटिंग फ्रटर्निटी यानी सारे स्पोर्ट्स वाले देखते हैं इन चीजों को बड़े गौर से और वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में क्या चल रहा है,
सही।
तो विच इज वेरी सैड, तो ये ना करें। तो जनाब ये हुआ है,
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड कल फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल एवरीथिंग इज सेम। So don't you go away and Shadaji, thank you so much.
Thank you, Majid bhai. I'll see you tomorrow.
Kuch sponsors ka paigamat, phir uske baad phir hum aapse ijazat chahenge. Till tomorrow, Allah Hafiz.
बाबास पिज्जा एंड विंग्स हॉट एंड फ्रेश पिज्जास की वैरायटी या अपनी पसंद का पिज्जा चिकन चरगा क्रिस्पी चिकन तंदूरी चिकन चिकन विंग और मजेदार फ्राइज पोटैटो वेजेस पुटीन, ऑनियन रिंग, गार्लिक ब्रेड, पेंजर्स और बहुत कुछ। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए विजिट कीजिए babaspizza.ca या कॉल करें मॉल्टन लोकेशन 9056737786 या ब्रैम्पटन लोकेशन 9057906786। बाबास पिज्जा एंड विंग्स।
Mesmerized Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerized Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा, दिल हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा
जहाँ जा मिला वही तुम मिला।